का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं एक कहानी, शब्दों का प्रवाह। इस बार का भारत आना उसे वापस यूएस नहीं लौटने देगा, लगा उसे यही था। उसने मनु को लिखा भी था, दिल्ली पहली बार नहीं आ रही हूं सिंडी, पर इस बार लगता है तुमसे मिलने के बाद मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। उसने मनु को कभी मनु नाम से नहीं बुलाया, जबकि सब उसे मनु नाम से ही जानते थे। मनु यानी मानसी, पूरा नाम मानसी जोशी। रोज नए नामों से पुकारना उसे अच्छा लगता था। कई ईमेल के आदान प्रदान के बाद जब पहली बार उसके मन में लगाव जागा तो उसने उसे नाम दिया सिंड्रेला और उसे छोटा करके सिंडी। वो उसे अपना आम नाम बुलाने जैसे लगने लगा था, लेकिन कब उसकी उंगलियों से कौन सा नया नाम फिसल जाएगा ये मनु नहीं जानती थी। पर वो जिस भी नाम से बुलाता मनु को अच्छा ही लगता था, और उसका नाम था अनुपम, पूरा नाम अनुपम सरकार। वो नज़दीकी लोगों में अनु नाम से जाना जाता था। दोनों को दोस्ती की शुरुआत में नामों में साम्य अनु मनु बड़ा अर्थपूर्ण लगता था। अनुपम ने लिखा भी था, सी द कनेक्शन, हमारे नामों में झंकार एक ही है। वाह वाह, व्हाट एन एक्सप्रेशन, मनु ने उत्तर में लिखा था। क्यों, मैं क्या तुम्हारे पाँव में भेड़ियां डाल दूंगी? नहीं मेरे दोस्त, एक बार आओ, दर्शन दो और वापस जाओ, मनु ने लिखा था उसी सहजता से जो सहजता उन दोनों के बीच में स्थायी भाव की तरह व्याप्त हो गई थी। दर्शन दो घनश्याम, श्याम मोरी अखियां प्यासी रे, उसने मजाक किया था। ये उसका बात करने का अंदाज था, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। चलो चलो, ऐसा कुछ नहीं, जब तुम मुझे देखोगे तो तुम खुद ही यहां से भागने की सोचोगे। क्यों, मेरी चहकती हुई चिड़िया ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं बहुत काली हूं। अनुपम को यकीन नहीं आया, पहले भी मानसी ने ये लिखा था कि उसने यकीन नहीं किया। ओहो मेरी कोयल, कितना मीठा गुनगुनाती हो तुम, मैं बहुत मोटी हूं। अनुपम को फिर यकीन नहीं आया, पहले भी मानसी ने ऐसा लिखा था और उसने तब भी यकीन नहीं किया था। ओहो मेरी नूर जहां, मुझे जरा आने तो दो वहां, मैं जरा भी सुंदर नहीं हूं। अनुपम को यकीन आना ही नहीं था, पहले भी मानसी ऐसा लिख चुकी थी, लेकिन उसने यकीन क्यों करना था? ओहो मेरी लैला, तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है, मैं सच कह रही हूं, तुम देखकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। उसे मानसी के काली मोटी असुंदर सुंदर होने से कुछ मतलब नहीं था। लिसन माय प्रिंसेस, तुम देखने की चीज नहीं हो, महसूस करने की चीज हो, यानी चीज हूं मैं। देखो मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ, मेरी शब्द विशेषज्ञ, और सुनो हर समय ये असुंदरता का राग आलाप ना छोड़ो, मुझे आने दो वहां, मैं तुम्हारी मानसी होना भुला दूंगा। मानसी हो इसलिए सुंदर नहीं होना मेरी सिंडी, तुम अपने को मेरी नजरों से देखो, तुम जानोगी तुम कितनी सुंदर हो। अरे रे रे, घबराओ नहीं, इतनी भी बुरी नहीं हो, आई एम वेरी स्मार्ट, लेकिन मेरे सामने मेहरबानी करके अपनी कोई स्मार्टनेस मत दिखाना, मुझे तुम्हारा सहज सरल व्यवहार चाहिए जो तुम हो अपने वास्तविक रूप में। वे दोनों ईमेल पर चैट कर रहे थे कि सब कुछ मानसी उसे पहले भी कह चुकी थी, लेकिन उसने इन बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे हर बार लगा या तो मानसी विनम्रतावश ऐसा लिख रही है या उसे खिंचाने के लिए, वरना इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने बांध लेने वाले पत्रों को लिखने वाली असुंदर कैसे हो सकती है? वैसे भी बाहरी सौंदर्य से ज्यादा वो आंतरिक सौंदर्य को महत्व देता था। वो मानसी से पत्र व्यवहार के बाद स्वप्न लोक में रहने लगा था। जिसमें किसी भी बदसूरती की कोई गुंजाइश नहीं थी। धीरे धीरे मानसी एक स्वप्न सुंदरी के रूप में बदलती गई थी और उसकी कल्पना की उड़ान ऊंची से ऊंची होती गई थी। उसके हृदय में बरसों से दबी हुई प्रेम लहरियां झंकृत होने लगी थी। इसी का परिणाम था कि उसकी उंगलियों से ईमेल पर मानसी के लिए हर क्षण नए नए नाम बिछलते रहते थे। मानसी के लिए भी दो शब्दों की दुनिया ने स्वप्नों की दुनिया का रूप ले लिया था। कितना आसान है यूं मस्त होकर जीना, दोनों को लगता। एक बार मानसी ने अनुपम को लिखा था, हमारा ये स्व निर्मित संसार कितना अच्छा है, किसी बाहर वाले का दखल नहीं। सच सिंडी, ये स्वप्न लोक अद्भुत है। अपनी पसंद के चरित्रों का निर्माण करो, अपनी पसंद के रूपाकार गढ़ो और उनके साथ रहो। हाँ अनु, बाहर अपनी पसंद के लोग नहीं मिलते। अपनी पसंद के लोगों की रचना हम अपने स्वप्न लोक में करते हैं और उनके साथ पूरी जिंदगी जीते हैं, पूरी शिद्दत के साथ। हम कभी साक्षात नहीं मिलेंगे अनु, वरना हमारा ये स्वप्न लोक टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हाँ सिंड्रेला, हम केवल अपने सपनों की दुनिया में मिलेंगे, मिलते रहेंगे। यहाँ हमारा अपना शासन चलता है, किसी को हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। हम एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और उनके लिखने की रफ्तार तेज हुई, वे दोनों ही साक्षात मिलने के लिए विहल हो उठे। मनु चुप रही तो अनुपम ने आगे लिखा, पांवों में तो नहीं, मन में बेड़ियां जरूर डाल दोगी। मुझे लगता है कि तुम मेरे सारे निश्चय, सारे नियम, तप सब भंग करने वाली हो। शाडा, भारतीय कन्या का थोड़ा तो लिहाज करो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। भारतीय कन्या यानी संकुचित, यानी पुरातन पंथी, यानी तुम्हारी तरह नहीं। तो अब भारतीयता के नाम पर मुझे डरा रही हो। माय ब्यूटीफुल सिंड्रेला, Your heart is so beautiful. Your brain is so beautiful. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल्ली आते ही तुम कहीं मेरा अपहरण ना कर लो। सच बताओ, कोई ऐसी योजना तो नहीं? और मुझे ये डर है कि मिलने के बाद हमारे बीच दोस्ती भी रहेगी या नहीं। अनु, दोस्ती में शक्लो सूरत की तो कोई अहमियत नहीं होती। बोलो बोलो अनु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिलने के बाद दोस्ती भी ना रखो? सच कहूं, मुझे देखने के बाद तुम्हारा दिल तो टूटने ही वाला है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए ऐसे ही ना। हाँ, मेरे दिल की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें देखने नहीं, तुमसे मिलने आ रहा हूं। और जैसा कि तुमने कहा था, मैं आंखें बंद करके ही तुम्हें देखूंगा। आंखें बंद करके देखने की बात दोनों के बीच में पहले भी हुई थी, संयोग से। एक बार मानसी ने किसी अंतरंग क्षण में लिखा था, अनु तुमने सचमुच मुझे हिप्नोटाइज किया हुआ है। हर जगह हर घड़ी सिर्फ तुम ही तुम, तुमसे अतिरिक्त तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। अच्छा, तो मैं हर घड़ी हर जगह कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ तुम्हारे साथ? कल मैं किसी रिश्तेदार के घर डिनर पर गई थी। हम बाहर के कमरे में बैठे थे, भीतर के कमरे में कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। अचानक मुझे सुनाई पड़ा कि तुम भी हो वहां और बहुत बोल रहे हो, बहस पर बहस। कितना बोलते हो तुम सच, मैं तुम्हारी आवाज पहचान सकती हूँ अब। मैंने तुम्हें वहां बाकायदा बोलते हुए सुना। अनु, मैं वहां तुम्हें ही डूबी रही, इतनी बेचैन हो उठी कि मन हुआ पार्टी बीच में ही छोड़कर घर लौटाऊं। अब मैं तुम्हारे बिना कोई पार्टी कैसे अटेंड कर पाऊंगी? मैं जहां भी जाती हूँ तुम मेरे साथ ही होते हो। अब मैं तुम्हारे बिना क्या हूँ? कुछ भी नहीं। Oh my dancing queen, ऐसी बातें करके तुम यहाँ ना मेरा जीना दुश्वार कर दोगी। अच्छा बताओ, अगर तुम मुझे हिप्नोटाइज करोगी तो क्या करोगी? उसका जीना जैसे सच में दुश्वार हो गया। उसने अपने कार्यक्रम में भारी फेरबदल किया था ताकि वो जल्दी से जल्दी भारत आ सके, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही। मैं तुमसे कहूंगी कि अपनी आंखें बंद करो और मुझे देखो। ओ सिंड्रेला, यू आर सो ब्यूटिफुल, माई आईज आर क्लोज्ड एंड आई एम सीइंग यू, अनुपम ने तब लिखा था। कैसे बोराए पगलाए से रहते थे दोनों। शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा घायल कर सकते हैं और किसी भी मरहम से ज्यादा दवा का काम कर सकते हैं। केवल शब्द, शब्द और सिर्फ शब्द। शब्दों में छुपे हैं केवल सपने, सपने और सिर्फ सपने। पिछले 2 महीनों से प्यार का ही मूड चल रहा था दोनों के बीच में। हाँ, केवल 2 महीने ही तो हुए थे उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आए हुए, पर लगता था जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। अनुपम को भारत आना तो था ही, पर उसने समय से पहले ही आने का कार्यक्रम बना लिया था। मानसी ने कुछ नहीं लिखा। मेरी अनारकली, ये बताओ अपने सलीम को लेने तुम एयरपोर्ट तो आओगी ना? ऑफ कोर्स, फ्लाइट बुक हो जाने पर बता देना। पर देखो, तुम इस तरह के नामों से ना मुझे ना बुलाया करो, मुझे शर्म आती है, मनु ने लिखा। ओहो मेरी भारतीय कन्या, ओके बाय, साइन आउट करता हूँ, अनुपम ने चैट बंद कर दिया। ये पहली बार नहीं था जो वो इस देश में आ रहा था, बल्कि वो इस देश का ही था, बस नौकरी चलते अमेरिका में बसा हुआ था। उसके माता पिता दिल्ली के अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उसने बहुत चाहा था कि माँ बाप उसके साथ अमेरिका में रहें। उन्हें बहुत समझाया, अनेक तर्क वितर्क दिए, परंतु उनके लिए अपनी धरती को छोड़कर जाना संभव ना था। इसलिए भी कि उस दूर देश में अपनी भाषा बोलने समझने वाले उनके हम उम्र कहाँ मिलेंगे। यहाँ चाहे वे रोज किसी से ना बोलें, पर एक तसल्ली तो है कि सारे अपने जैसे ही लोग हैं। उसकी व्यवस्था थी नौकरी की, ज़्यादा पैसा कमाने की, या बस आदत पड़ गई थी वहाँ रहने की, कि वो एक बार वहाँ गया तो बस वहीं का होकर रह गया। उसने सोचा ही नहीं कि कभी वापस अपने देश लौटना भी है। बीच बीच में वो आता रहता है, 1 वर्ष में 2 बार तो आता ही है, 20-25 दिन रहता है और फिर वापस अपने देश को। हाँ, कहने को अब वही उसका देश है, हालांकि वो ऐसा कहना नहीं चाहता, देशभक्ति की भावना आड़े आती है, पर करे क्या। सच तो यही है ना कि वो कुछ दिन यहाँ बिताकर अपने देश, देश नहीं अपने घर वापस चला जाता है। अब तो अनेक वर्ष हो गए उसे वहाँ रहते, उसने वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर ली है। अब उसका स्थायी रूप से भारत लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी जिंदगी वहीं बनी और वहीं बिगड़ी। अब इसे बिगाड़ना कहा जाए तो 1 वर्ष नौकरी में गुजारने के बाद उसने वहीं की यानी विदेशी लड़की से शादी की थी और 1 वर्ष बाद अलग भी हो गया था। कैसा दबदबा था उस गौरी लड़की का, यद्यपि उसका दिल और दिमाग भारतीय संस्कारों से लबालब भरे हुए थे, फिर भी बाहरी आकर्षण को वो नकार नहीं सका था। पारिवारिक असंतोष और हस्तक्षेप के बावजूद उसने अपने मन की राह चुनी थी, लेकिन कोशिशें करने पर भी वो उस राह पर दूर तक नहीं चल पाया था। तलाक लेने के बाद घर वालों ने बहुत जोर दिया कि अपने देश लौट कर यहाँ की किसी लड़की से विवाह कर ले, लेकिन किसी ना किसी काम के चलते ये यूं ही टलता रहा। और अब तो इस बात को इतना समय गुजर चुका था कि दोबारा शादी करना उसे झंझट जैसा लगने लगा था। वो खुश था, मस्त था। भाग दौड़ भरी जिंदगी में उसे शादी की गुंजाइश भी नजर नहीं आती थी। जीना ही तो है, जैसे भी जीने की आदत पड़ जाए आदमी जी लेता है। वो जिस भी हाल में था संतुष्ट था। विवाह जैसी चीज से उसका भरोसा ही उठ गया था। ये एक संयोग ही था कि इंटरनेट पर अनुपम और मानसी की बातचीत शुरू हुई। अपने खाली वक्त में वो कुछ कुछ लिख लेता था, बस शौक के तौर पर। हैरानी की बात यह थी कि बरसों अमेरिका में रहने के बावजूद वो हिंदी में लिखता था, कविता, कहानी या डायरी नुमा कुछ। वो इस लेखन को कहा करता था स्वांता सुखाए। कभी कभी अपने 2-4 भारतीय मित्रों के साथ होने वाली बैठकों में उसने अपना लिखा हुआ सुनाया था और वाहवाही बटोरी थी। बाद में तो मित्र स्वयं उसे रचना सुनाने का आग्रह करने लगे थे। मित्रों को अच्छा लगता था, विदेश में रहते हुए अपनी भाषा से इस प्रकार जुड़ना, अनुपम की हिंदी में लिखी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सौंधी महक हो जैसे, विदेश में रहते हुए अपने देश की हर छोटी से छोटी चीज खींचती है अपनी ओर। एक दिन अनुपम ने देखा कि उसके पास उसके लिखे हुए पन्नों का ढेर लग चुका है। एकाएक उसका मन हुआ कि क्यों ना इन्हें पुस्तक रूप में छपवाया जाए। उसके मित्रों की भी यही राय थी कि वो अपनी सारी रचनाओं को पुस्तक के रूप में छपवाए, लेकिन अमेरिका में रहते हुए हिंदी में पुस्तक छपवाने की बात उसे नाउम्मीदी जैसी लगी। यहाँ कौन सा प्रकाशक होगा ऐसा, इसकी अनुपम को कोई जानकारी नहीं थी। उसके मिलने जुलने वालों के दायरे में ना कोई हिंदी वालों के संपर्क में था, ना हिंदी लिखने वालों के। इसके लिए उसका अपने देश की ओर रुख करना स्वाभाविक था। भारत में माता पिता एवं रिश्तेदारों के सिवा उसके सारे संपर्क धुंधलाए हुए थे। 15 वर्ष से अधिक होने को आए हैं। उसे किसी ऐसे भारतीय मित्र जानकार का नाम ध्यान नहीं आया जो इस मामले में उसकी मदद कर सके। माता पिता इस उम्र में थे कि उनके बस का तो कुछ था नहीं, इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने इस प्रकार संबंध में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क साधा, किंतु समय अभाव के कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर सका। समय उसके पास होता था केवल रात में। एक रात जब उसने अपना लैपटॉप खोला कुछ लिखने के लिए, तो उसे इंटरनेट पर प्रकाशकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ख्याल आया। उसने इंटरनेट पर टटोलना शुरू किया। ये क्या, एक महिला प्रकाशक, मानसी जोशी, आकर्षित तो वो महिला के कारण ज्यादा हुआ। प्रकाशक की तलाश उसे तो थी ही, तो ये बहाना बनाकर उनके एक दूसरे से संपर्क में आने का कारण बना। आरंभ के कुछ दिनों तक वे केवल व्यवसायिक जानकारी लेते देते रहे। एक दो दिन के अंतराल में दोनों की तरफ से एक एक मेल इधर उधर होता था। कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं, कोई एक दूसरे के बारे में खुलासा नहीं, पर शब्दों में कुछ ऐसा जादू था कि दोनों एक दूसरे के मेल का इंतजार करते। आखिर एक दिन अनुपम ने मानसी को लिखा, और क्या करती हैं आप, आपके क्या क्या शौक है? मानसी ने उत्तर लिखा, कुछ खास नहीं, पढ़ना लिखना बस। अनुपम पूछना चाहता था आपके परिवार में कौन कौन है, पर पूछ नहीं पाया। सभ्यता का तकाजा, मुंह फट होकर कैसे कोई व्यक्तिगत बात पूछ ले। मानसी पूछना चाहती थी, आप हमेशा रात को मेल लिखते हैं, आपकी पत्नी कुछ नहीं कहती, पर पूछ नहीं पाई। सीधा पत्नी के बारे में पूछना खराब लगता ना, फिर वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है, यही कारण होगा शायद। एक दिन अनुपम ने लिखा, यदि आप अन्यथा न लें तो एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक भारतीय मित्र यहाँ कई वर्षों से है, वो एक भारतीय लड़की से शादी करना चाहता है, आप किसी को जानती हो तो? जनाब कुंवारे हैं, मित्र के बहाने से अपने बारे में कह रहे हैं, मानसी ने सोचा। लिखा, मैं खास किसी को नहीं जानती, पर आप यहाँ के अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं, मतलब आपके मित्र विज्ञापन दे सकते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा उससे, जरूरत पड़ने पर आपका सहयोग तो मिलेगा ही। अवश्य, वैसे मेरी एक सहेली है लेकिन वो तलाकशुदा है, मानसी ने लिखा बात आगे बढ़ाने के लिए। उसकी पहचान में कोई ना कोई तो तलाकशुदा होगी ही। ओहो, तो मैडम तलाकशुदा हैं। सहेली के बहाने से अपने बारे में कह रही हैं। अनुपम ने सोचा और जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, माय फ्रेंड इज ऑल्सो अ डिवोर्सी। अपनी सहेली के बारे में विस्तार से बताएं, क्या करती हैं, उनके शौक वगैरह। तो जनाब गवारे नहीं, तलाकशुदा हैं, सीधे सीधे बात नहीं बता सकते, लिखा उसने। शीघ्र उसका प्रोफाइल भेज दूंगी। लिखने को तो मानसी ने लिख दिया था, पर उसका प्रोफाइल भेजेगी वो कैसे? अनुपम ने उसे ही वो लड़की समझ लिया था। उसने एकाध दिन के बाद प्रोफाइल भेजने का आग्रह किया, साथ ही वो अपने ऊपर काबू न रख सका और उसने लिख दिया, मानसी जी आई एम मेकिंग इट क्लियर दैट इफ यू आर द गर्ल आई एम श्योरली एब्सोल्युटली सिंगुलरली सरेंडरिकली इंटरेस्टेड इन प्रिंसिपल। मानसी अनुपम का ये मेल पढ़कर हैरान रही, बिना देखे बिना मिले इस तरह की वचनबद्धता। उसने उत्तर तुरंत दिया, नो आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम नॉट अ डिवोर्सी, सॉरी मैंने समझा था कि आपने अपने बारे में लिखा था, क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी, मैंने शादी नहीं की, स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, मैं जो भी हूँ जिस हाल में भी हूँ उसमें खुश और संतुष्ट हूँ। वो पूछना चाहता था कि मानसी ने शादी क्यों नहीं, कोई मिला नहीं था, या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बढ़िया मनमोहक बातें करने वाली को कोई मिला ना हो। अनुपम ने अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया, फिर किसी ने उसका दिल तोड़ा होगा, इस बात की गुंजाइश हो सकती थी, मैं इस बारे में कैसे पूछूंगा। उसने सोचा जरा उसकी उंगलियों से सिर्फ ये ओह जैसी कोई बात नहीं, आई एम ओके इफ यू डोंट माइंड, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, अनुपम ने पूछा। व्हाई नॉट, दोस्त तो हम बन चुके हैं, वी आर ऑनलाइन फ्रेंड्स। ओह आई एम सो मच रिलैक्स्ड, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, यू नो वॉट सच कहूँ तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई ऑनलाइन फ्रेंड। मानसी के मन में कुछ खट से बजा, उसने लिखा, शब्दों के आदान प्रदान में एक फील गुड फैक्टर रहता है, हाँ मुझे इंतजार रहता है आपकी मेल का, मैं बार बार अपना लैपटॉप खोलकर देखता रहता हूँ, मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है मानसी, फिर आप तो मेरा भविष्य भी संवारने वाली हैं, वो कैसे, मेरी किताबें छापकर, क्या मैं आपको तुम बुला सकता हूँ। श्योर, तुम्हें जान लेने भर से मेरा भविष्य जुड़ गया है। मानसी तुम्हारी मित्रता मेरे लिए भगवान की देन है, कोई पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप। मानसी चुप, कुछ बोलो मानसी। अनुपम की बातें मानसी को भाव विभोर किए हुए थे, उससे कुछ लिखा ना गया। आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ, सिंड्रेला, माय ऑनलाइन फ्रेंड सिंड्रेला, माय पेन फ्रेंड सिंड्रेला। मानसी फिर चुप, सिंड्रेला कुछ लिखो कि नहीं, मैं शायद तुमसे उम्र में बड़ी होंगी, मैंने हिसाब लगाकर देखा है, अब ये उम्र कहाँ से आ गई बीच में। मानसी चुप, अनुपम चुप ना रह सका, उसने लिखा, कुछ बोलो सिंड्रेला, फील गुड फैक्टर मेड मी स्पीचलेस, मानसी ने लिखा और जैसे दिल की पूरी बात किताब खोल कर रख दी अनुपम के सामने, चैट बंद हो गया, बल्कि सच्चाई ये थी कि उसके बाद चैट कभी बंद ही नहीं हुआ, 24 घंटे कंप्यूटर खुला रहने लगा धीरे धीरे, जो कि बहुत जल्दी जल्दी था, दोनों मानसिक धरातल पर नज़दीक आते गए और बातों के अंदाज स्पष्ट से स्पष्टतर होते गए, मानसी को हर चीज़ अपनी उम्र का भय सताता रहा, वे दोनों अपना स्वप्न लोग टूटने के भय से अपनी असलियत सामने नहीं लाते, ना उन दोनों ने एक दूसरे को कभी अपनी फोटो भेजी, ना ही अपनी उम्र बताई, एक झूठ को जीते हुए खुश रहना कितना सरल है, ये उन दोनों की जैसे विवशता बन गया था। अनुपम ने एक बार उसे लिखा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़ी होगी, अगर होगी भी तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैंने तुम्हें छोटा करने का एक उपाय सोचा है, तुम्हारे लिए क्या मैं छोटी हो जाऊंगी, हाँ मैं तुम्हारी जन्मतिथि बदल रहा हूँ, अब तुम्हारी जन्मतिथि है 29 फरवरी, हर 4 साल में से 3 साल कम हो गए, इस तरह तो मैं शून्य हो जाऊंगी, नहीं इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 4 साल का हूँ तो तुम 1 साल की, यानी तुम मुझसे 3 साल छोटी रहोगी, हमेशा, यानी तुम मुझे अपने बराबर लाकर ही छोड़ोगे। अब समझी मेरी ट्यूबलाइट, नाउ यू आर एन एनलाइटेंड सोल, वेरी स्मार्ट। उसके बाद अनुपम काम में कुछ ऐसा व्यस्त हुआ कि मेल लिखने का उसे वक्त न मिला। मानसी के मन में संशय जागा, कहीं उम्र के कारण तो पीछे नहीं हट गया। मैंने ये लिख दिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कहीं इस कारण तो पीछे नहीं हट गया। मानसी ने स्वतः लिखना उचित नहीं समझा। आखिर 3 दिन के बाद अनुपम का मेल आया, वैसा ही हंसता खिलखिलाता। ओ माय सेनोरिटा, हाउ इज लाइफ, इतने दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हारा एक नया नाम रखा है, पत्थर दिल। लिसन सेनोरिटा, ये नाम लिखने की टेरिटरी मेरी है, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। दे दूंगी, पर पहले ये बताओ कि मेरा पत्थर दिल दोस्त कहाँ था इतने दिन? तुम्हारे पास आने की भागदौड़ में लगा था। ओ, मैं समझी किसी सूरपनखा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? ओ नो सीते, तुम्हारा राम एकदम एक व्रती है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाय मेरे राम, ये तुमने क्या लिख दिया? घबरा के मानसी ने चैट बंद कर दिया। अनुपम ने उसे पुनः चैट पर आमंत्रित किया। यू आर क्रेजी मैन, मानसी ने लिखा। यस आई एम क्रेजी, मैं सच में तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। अपने को संभालो अनु। अच्छा बताओ, मुझसे मिलकर सबसे पहले तुम क्या करोगी? क्या करोगी मतलब, तुम बताओ। आई विल स्मूच, गंदे कहेंगे। आई विल अनदर वन, ओके बाय। और मानसी ने चैट बंद कर दिया। अनुपम को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं जा सकी मानसी, अनुपम ने खुद मना किया। एक तो इतनी दूर, ऊपर से आधी रात की फ्लाइट। तय ये हुआ कि अनुपम एयरपोर्ट से सीधा अपने घर यानी अपने माता पिता के पास जाएगा और अगले दिन शाम को वो मिलेंगे किसी रेस्तरां में। अनुपम के दिल में बेसब्री थी और मानसी के दिल में उथल पुथल। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये दोनों के ही दिल में था। अगला दिन भर जेट लैग के कारण अनुपम सोया रहा। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और अगले दिन की शाम आई। पहचानना मुश्किल नहीं था। जब अनुपम रेस्तरां पहुंचा, मानसी वहां पहले से ही मौजूद थी, दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी हुई। यही होगी, किसी के इंतजार में बैठी दिखती है, मेरे ही, कहीं से मोटी नहीं है लड़की, अनुपम ने सोचा और सामने जा खड़ा हुआ। उसके सामने आते ही मानसी को लगा यही है और बिना कुछ पूछे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब दोनों आमने सामने बैठे थे। मानसी ने देखा, एकदम चिट्टा बुराक, जैसे कोई अंग्रेज हो, झरहरा, हसमुख, ओजस्वी, तेजस्वी, और वो बुझ गई। उसके आगे क्या लगेगी वो, सूरज की तीखी रोशनी के आगे जैसे रात का अंधेरा। अनुपम ने गौर से ना देखने का बहाना करते हुए उसे गौर से देखा। बड़ी तो है पर चलेगी, लेकिन उसका रंग, ये तो सचमुच काली है, एकदम काली स्याह, जिसे छूने भर से अपने हाथ काले होने का डर हो। नए नक्श, ठीक ठाक, मोटी तो नहीं है, स्वस्थ है, उम्र चलो ठीक है, चला लेंगे, पर काली इतनी, जिसका अनुमान वो लगा भी नहीं सका था। उसने सोचा था हम भारतीय तो अपने आप को काला कहते ही हैं, तो ऐसी ही कुछ होगी वो, सांवली, पर उसने सच लिखा था, वो सच में काली है। शायद इसीलिए इसका विवाह ना हो पाया हो, कौन जाने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए मुझे, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है। अनुपम ने अपने सिर को झटका। उसे अपने रखे प्यार के इतने नामों में से कोई नाम ध्यान ना आया। तुम कहना भी वो भूल गया, निकला उसके मुंह से ये, कैसी हैं आप, कहते हुए हंसा। हंसना जरूरी था, मानसी को कुछ पता ना चला, पर पता कैसे ना चलता, वो कोई बच्ची तो नहीं थी ना, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे। आज पहली बार किसी लड़के से नहीं मिल रही थी, जब भी मिली थी प्रतिक्रिया समान ही होती थी। कहा उसने, पुस्तक की पांडुलिपि लाए हैं आप? कौन सी पुस्तक? उसके बुझे मन में पुस्तक छपवाने के बारे में सारे अरमान जल चुके थे। उसे एकाएक ध्यान में आया। अपनी किताब छपवाना चाहते थे ना? ओह, इस समय तो नहीं लाया, कल दे दूंगा, फोन करके मिलूंगा आपसे। वो कल कभी नहीं आया और ना ही फोन। जिस स्वप्न लोक को वो वास्तविकता में बदलने के लिए बेचैन थे, वो चूर चूर हो गया था। गाथा में आप सुन रहे थे शब्दों के प्रवाह, जिसे आप सामने प्रस्तुत कर रही थी अंजू जेटली।